जैसे ही अमरेंद्र जी ने ये कहा, करिश्मा जी कहने लगी थी, अरे वाह अमरेंद्र जी, आपकी याददाश्त तो काफी ज्यादा तेज है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शॉल एक जादुई शॉल है, और जैसे ही जिन अंश पैदा होगा, कितनी सारी काली शक्तियां उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन जब तक जिन अंश इस जादुई शॉल में रहेगा, कोई भी काली शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब आप चलिए जल्दी से। ऐसा कहकर जल्दी ही अमरेंद्र जी और करिश्मा जी दोनों उस कमरे में जाने लगे थे, और तभी अचानक तारा की जोरों से चीखने की आवाज आई थी। जैसे ही तारा परी के चीखने की आवाज आई, करिश्मा जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसका मतलब साफ था कि जिन अंश आने ही वाला है या फिर आ चुका है, तो इसीलिए करिश्मा जी जल्दी ही वहां पहुंची, और वहां जाकर जैसे उसने तारा की ओर देखा, तारा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ करिश्मा जी को देख रही थी। और तभी सोनल परी की गोद में एक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत सी बेटी थी। तारा परी को बेटी हुई थी, जो कि जिन्नातों का वंशज थी। अब जैसे ही करिश्मा जी ने उसे बड़ी ही खूबसूरत बेटी को देखा, तो उसकी आंखों से आंसुओं के साथ खून निकलने लगा था। हालांकि वे खुशी के आंसू थे, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसने किसी की भी परवाह नहीं की थी। वहीं तारा बार बार अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूर्ण चंद्रमा की रात न होकर पूरा का पूरा चांद तारा परी के गोद में सिमट आया हो। अभी तक अमन ने अपनी बेटी को नहीं देखा था, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। उसे केवल करिश्मा मॉम के आने का इंतजार था। तभी करिश्मा जी ने देरी ना करते हुए उस ग्रीन रंग के शॉल से अपनी जिन्नातों के वंशज यानी कि तारा परी की बेटी को कवर कर दिया था, क्योंकि वो बड़ी ही खूबसूरत थी। एक तो वो एक परी की बेटी थी, ऊपर से वो जिन्नातों का वंशज थी, तो उसकी खूबसूरती का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। अब जैसे ही तारा परी की बेटी को, जिन्नातों के वंशज को, करिश्मा जी ने कवर किया, देखते ही देखते वहां जो काली शक्तियां उस वक्त मौजूद थीं, अचानक से वे वहां से गायब होने लगी थीं, क्योंकि उस शॉल को वे छू तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसे काली शक्तियों के महागुरु ने भी अमित के बेटे को गायब करके वहां भेज दिया था। इतना ही नहीं, राक्षस की माँ ने भी गायब करके एक हसीन नौजवान को वहां भेज दिया था, लेकिन उन्हें इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि सर ऑलरेडी करिश्मा जी ने ऐसा कुछ जुगाड़ करके रखा हुआ होगा कि जैसे ही जिन्नंच पैदा होगी, उसके तुरंत बाद वे उसे सेव कर देंगे। और अब तो जैसे ही वो नौजवान वापस से उसे राक्षस की माँ के पास गया, वो आग बबूला हो उठी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन लोगों के इस तरह के भी कोई प्लान्स होंगे। वेल, अब क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और जल्दी ही करिश्मा जी उसे बड़ी ही खूबसूरत सी एकदम चांद जैसी बेटी को गोद में लेकर अमन के पास आई थी, और जैसे ही अमन ने अपनी बेटी को देखा, वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि छोटी सी प्यारी सी तारा परी उसकी गोद में आ गई हो। वो बड़ी खूबसूरत थी, वो उसे देखे जा रहा था, और वहीं तारा परी एकदम से ठीक ठाक खड़ी हो गई थी। हालांकि नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल लेडी बच्चा पैदा करती है तो उसे खड़े होने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है, लेकिन यहाँ तो एक परी से बच्चा पैदा हुआ था, तो इसीलिए उसे खड़े होने में केवल कुछ सेकंड्स का ही समय लगा था। तारा परी जल्दी ही खड़ी होकर अमन के साथ जाकर खड़ी हो गई थी, और दोनों बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ अपनी खूबसूरत सी बेटी को देख रहे थे। और कहीं ना कहीं तारा परी का दिल धड़कने लगा था, क्योंकि उसकी ये नाजुक सी बेटी इतने बड़ी राक्षस का मुकाबला कैसे कर पाएगी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस तरह के सवाल आने लगे थे। उसे खुद ही नहीं पता था कि आखिरकार उसकी ये प्यारी सी बेटी किस तरह से उस राक्षस का मुकाबला कर पाएगी। वो राक्षस तो उसकी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, और कहीं राक्षस ने उसकी बेटी को अपना निशाना बना लिया तो कहीं ना कहीं तारा का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ तारा परी अकेली थी, तो उसे केवल अपनी और परीलोक की चिंता थी। लेकिन अब तो अपनी बेटी को गोद में लेने के बाद उसे ऐसा लगने लगा है कि उससे ज्यादा प्यारा उसके लिए उस दुनिया में कोई नहीं है, और वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है, सब कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी पर वो आंच नहीं आने दे सकती थी। तो कहीं ना कहीं अब तारा कश्मकश का शिकार हो गई थी। वहीं अमन तो अभी बेख्याली से बाहर ही नहीं आ रहा था, वो तो केवल अपनी बेटी को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अपने हाथों में थाम रखी हो और वो उसे देखे जा रहा हो, और वो खूबसूरत चीज कुछ और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बेटी थी। अब तारा के पास करिश्मा जी आगे आई थी और कहने लगी थी, बेटा हमें अभी और इसी वक्त जिन अंश जो पैदा हुई है उसे लेकर जिन्नातों की दुनिया में जाना होगा। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, तारा हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया, और वो कहने लगी थी, ये आप क्या कह रही हैं करिश्मा मॉम, ये बहुत छोटी है, भले ही जिन्नातों की दुनिया में कैसे जा पाएगी, और वहां देखकर ये तो सबको डर जाएगी। आपको पता है ना, जब मैं जिन्नातों की दुनिया में गई थी तो मैं कितना ज्यादा डर गई थी, हालांकि मैंने वहां पर अपने डर को अपने इमोशंस पर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन मेरी बच्ची ये तो बिल्कुल जरा सी है, ये डर जाएगी। अब जैसे ही तारा को जिनंज की इस तरह से फिक्र हुई, करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, माँ बनने के बाद इंसान के विचार जज्बात बहुत जल्दी से बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। मैं जानती हूँ तुम पहली बार माँ बनी हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही तरह के जज्बात इस वक्त अपनी बेटी को लेकर जन्म ले रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ये बेटी कोई आम बेटी नहीं है, पूरे सफ़ेद जिन्नातों की उम्मीद तुम्हारी बेटी से टिकी हुई है। इतना ही नहीं, इसके अंदर इतना हुनर है कि ये सभी काली शक्तियों को खत्म कर सकती है। हाँ, हालांकि अभी तुम्हें ये बिल्कुल नाजुक, एकदम कोमल और फूलों के समान दिखाई दे रही है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा शक्तिशाली पूरी दुनिया में तो क्या, पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने इस तरह से बात की, तारा परी उस वक्त चुप हो गई थी और कहने लगी थी, करिश्मा मॉम, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तभी करिश्मा जी तारा को रोकते हुए कहने लगी थी, नहीं बेटी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो। जिनंज को लेकर मैं, अमन और तुम्हारे पिताजी यानी कि अमरेंद्र जी, हम लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि तुम जिन नहीं हो। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, तारा परी कहने लगी थी, लेकिन करिश्मा मॉम, मैं पहले भी तो अमन सर के साथ जिन्नातों की दुनिया में गई थी, तब भी तो मैं जिन नहीं थी, तो फिर आज क्या हो गया है, मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ क्यों नहीं जा सकती हूँ। तभी करिश्मा जी कहने लगी थी, बेटी, इसके पीछे क्या कारण है मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगी, और उस वक्त तुम जिन महाराज अमन की बीवी के तौर पर गई थी, लेकिन आज जिन्नंज अकेली जाएगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं तुम्हें आकर बताऊंगी। अभी के लिए मुझे इसे जिन्नातों की दुनिया में लेकर जाना होगा और सभी को इसका दीदार करवाना होगा, क्योंकि सब लोगों की बहुत बहुत सारी उम्मीद इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि काली शक्तियों के अंदर में हमारे कितने ही सफेद जिन कैद हैं, जिनके परिवार वाले इसे बेसब्री से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने कई सौ सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब जा
खत्म हुआ है, तो इसीलिए मुझे उसे सबको मिलने लेकर जाना ही होगा, और सबके दुख ही केवल 15 दिनों के बाद दूर कर देगी। ऐसा कहकर करिश्मा जी अमन और अमरेंद्र जी को लेकर वहां से जाने लगी थी। तभी अमन ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बेटी के साथ मैं भी जा रहा हूँ, तो तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और ना मैं अपनी बेटी पर किसी तरह की कोई आंच आने दूंगा। अब जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा परी उस वक्त के लिए चुप हो गई थी, और साथ ही साथ अपनी बेटी के इस तरह से चले जाने पर वो थोड़ा सा दुखी भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो क्या कर सकती थी, और सोनल परी उसे संभालने लगी थी। वहीं दूसरी ओर रानी परी परीलोक से अपनी बेटी का बेटा, तारा परी का बेटी पैदा होना देख चुकी थी, और वो भी उनसे मिलने के लिए आ पहुंची थी। लेकिन जैसे ही उन्हें वहां आकर इस बात के बारे में पता चला कि करिश्मा जी जिन अंश को लेकर यानी कि तारा परी की बेटी को लेकर जिन्नातों की दुनिया में गई हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई थीं और कहने लगी थीं, तारा बेटी, अब क्या होगा, भले ही तुम्हारी सास करिश्मा जी को इस बात के बारे में पता हो कि तुम एक परी हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो कभी भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि तुम अपनी बेटी को लेकर परीलोक में जाओ, लेकिन जब तक तुम उसे लेकर परीलोक में नहीं आओगी, वो राक्षस को खत्म कैसे करेगी। तभी तारा कुछ सोचने लगी थी और रानी परी कहने लगी थी, बेटा, तुम्हारी सास यानी कि सफ़ेद जिन्नातों ने भी उससे काफ़ी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, अब क्या होगा, जिन अंश जिन्नातों की मदद करेगी या फिर अपनी माँ की मदद करेगी। तभी तारा के दिमाग में बार बार यही बातें घूमने लगी थीं कि जिन्नातों की वंशज आखिरकार मदद करेगी तो किसकी, क्या वो तारा परी की मदद करेगी या फिर वो अपने पिता अमन के सफ़ेद जिन्नों की मदद करेगी या फिर उन्हें काली शक्तियों के कैद से रिहा करवाकर सबको काली शक्तियों से आज़ादी दिलाएगी। कहीं ना कहीं अब तारा परी का दिमाग पूरी तरह से डगमगाने लगा था और उसने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया था और जोरों से एक चीख मार दी थी और कहने लगी थी, बस कीजिए, चुप कीजिए, कोई मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। अब जैसे ही तारा परी ने ये कहा, सभी के सभी उस वक्त के लिए चुप हो गए थे। वहीं सोनल परी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। सोनल परी जो कि अब इंसानी योनि में थी, तो अब उसकी आंखों में मोती की जगह आंसू निकला करते थे। सोनल परी को रोता हुआ देखकर रानी परी ने उसके सर पर हाथ रखा था और कहने लगी थी, तो बहुत किस्मत वाली हो सोनल, कम से कम तुम्हें खुलकर रोने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन हमारी किस्मत में तो खुलकर रोना भी लिखा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहते हुए रानी परी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर अमन, करिश्मा जी और अमरेंद्र जी तीनों ही जिन अंश को लेकर जिन्नातों की दुनिया में पहुंच चुके थे और जैसे ही वे जिन्नातों की दुनिया में गए, वहां का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। इतना ही नहीं, वहां पर कितने ही सारे जिन काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। वे सभी के सभी सफेद रंग की मालाओं के साथ जिन अंश का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों की जिंदगी में ये समय पूरे 1000 वर्षों के बाद आया था और हजार वर्षों में काली शक्तियों के महागुरु ने जितने भी सफेद जिन्नों को अपने कैद में किया हुआ था उनको अब रिहा करवाने का समय आ चुका था। केवल जिन अंशी था जो काली शक्तियों के महागुरु से सभी सफेद जिन्नों को रिहा करवा सकता था, जिन भी सफेद जिन्नातों को काली शक्तियों के महागुरु ने अपना निशाना बनाया था। इसीलिए जिन अंश को देखने के बाद जितने भी सफेद जिन्नातों के परिवार वाले काली शक्तियों के महागुरु के कैद में थे सभी खुशी से झूमने लगे थे। उनके लिए तो आज एक तरह की दिवाली बनने लगी थी क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि उनके परिवार वाले बहुत ही जल्द रिहा हो जाएंगे। अब हजार वर्षों का जो उनका कड़ा तप है उसका उन्हें फल मिलने वाला था। तो कहीं ना कहीं सभी जिन जिन अंश को देखने के लिए व्याकुल थे और एक एक करके सभी जिन ने आकर जिन अंश को देखना शुरू कर दिया था और सभी अपने सिरे से उसे आशीर्वाद देने लगे थे। अमन काफी ज्यादा खुश था। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसे एक बेटी हुई थी, क्योंकि जहां तक उसे लग रहा था कि जिन अंश से सीधा सीधा मतलब एक बेटे का था, लेकिन अब बेटी को देखने के बाद कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि छोटी सी तारा उसकी गोद में हो। अमन उस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अपनी बेटी को देख देख कर फूले नहीं समा रहा था, लेकिन जिस तरह से तारा परी को अपनी बेटी को लेकर डर लगने लगा था वहीं जिन्नातों का इतना ज्यादा उत्साह देखने के बाद अब उसे भी अपनी बेटी के लिए डर लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर सभी जिन्नातों ने उसकी बेटी से इस तरह की उम्मीदें लगा ली हैं तो क्या वाकई उसकी बेटी उनकी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी, क्योंकि वो एकदम फूल के समान कोमल और बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी सी थी। तो क्या वो इतने बड़े काली शक्तियों से मुकाबला कर पाएगी? कहीं ना कहीं अमन को भी अब इस बात की चिंता सताने लगी थी।